एक दिन पहले हंसी हंसी में आपसे अर्ज की थी, कहीं कुछ भी गलत घटित होता है तो किसी न किसी प्रकार से वो घटना मेरे ही सामने आती है। से हिमाचल प्रदेश की बात बताई थी कि मैंने किसी से बच्ची अमृतवाणी बांट रही थी, सत्संग था वहाँ पर, मंडी की बात है। हिमाचल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अमृतवाणी मैं लेके अंदर चला गया तो खोली, स्वामी जी महाराज का चित्र फटा हुआ था, उखड़ा हुआ था। तो उस अमृतवाणी को मैं जेब में डालना भूल गया, वहीं रह गई। 11 मार्च को मैं रोहतक में था, राम बाबू बैठे हुए हैं यहाँ पर, बात याद आ गई। तो जैसे आप लोग ये 2-3 अमृतवाणी साइड टेबल पर रखते हैं, तो ऐसे ही इन्होंने भी एक अमृतवाणी मेरे पढ़ने के लिए रखी हुई थी, पाठ करने के लिए। मैंने उसे उठाया तो मुझे कुछ मोटी मोटी भारी वो अमृतवाणी लगी, खोल लिया, उसे पढ़ना शुरू किया। जो पड़ा हुआ था वही आगे आ गया, तो मैं देखूं कि कुछ मेरे पन्ने पलटने में कोई गलती हुई है या क्या हुआ है। आगे फिर ऐसे ही हुआ, वो 32 पृष्ठ की अमृतवाणी 48 पृष्ठ की थी, तो उसे भी मैं जेब में डाल के ले आया। कपिला जी को मैंने पकड़ा दी कि आप सबसे सार्थक निवेदन है, ऐसी त्रुटि किसी भी पुस्तक में देखो तो वहां से उठा लीजिएगा, ताकि और किसी के हाथ में ना आए। हजारों की संख्या में पुस्तकें छपती हैं, सो कोई ना कोई गलती प्रिंटिंग में, बाइंडिंग में किसी न किसी प्रकार की रह जाती है। ये यहीं की बात नहीं है, बड़ी बड़ी कीमती पुस्तकें भी जो हैं उनमें भी तरह तरह की गलतियां जो हैं वह होती हैं। अभी किसी ने एक पुस्तक मुझे भेजी, उसके पृष्ठ भी इसी प्रकार से इंग्लिश में थी वह पुस्तक, और यहाँ के बड़े प्रसिद्ध कोई पब्लिशर, जाने माने पब्लिशर द्वारा, सो ये सब कुछ हो जाता है। सो हम सबका फर्ज बनता है कि जहाँ ऐसी चीज देखें उसे अपने ही लिए रख लें, ताकि और किसी साधक के हाथ में ना आए। यदि वह ठीक हो सकती हो तो उसे स्वयं ठीक करके तो वापस रखें, यदि नहीं हो सकती तो फिर इनको दे दें, ये कुछ कर लेंगे उसका। धन्यवाद। कल भीष्म की शरणागति की चर्चा चल रही थी, साधक जी बड़ा मार्मिक प्रसंग है ये। भीष्म मेघनाथ से प्रश्न करता है, बेटा जिस घर में व्यक्ति पैदा होता है, पलता है, बड़ा होता है, आज उस घर को यदि आग लग जाए तो व्यक्ति का क्या कर्तव्य बनता है? उसी घर में रह के तो आग में जल जाए, घर को जलने दे? ये विवेक युक्त बात तो नहीं लगती। बड़े सुंदर शब्द प्रयोग करते हैं भविष्य जी महाराज, ये बात मूर्खता की है, बुद्धिमत्ता की तो नहीं। जिस घर में आग लग जाती है, व्यक्ति कोशिश करता है, यदि अपना घर है या पराया हो तो भी कोशिश करता है कि आग बुझाने की चेष्टा की जाए। जितना अधिक से अधिक यदि जलने से नहीं बचाया जा सकता तो जितना अधिक से अधिक सामान निकाला जा सके वह निकाला जाए। यदि कोई परिवार के सदस्य इधर उधर कमरों में पड़े हुए हैं तो उन्हें निकाला जाए और स्वयं बच के निकला जाए। ये स्वाभाविक एक प्रतिक्रिया है, घर के प्रति कृतज्ञता नहीं। घर से निकल जाना, बाहर जाना, जलते हुए घर से कोई उसके प्रति कृतज्ञता जो है वह नहीं है। भीष्म कह रहे हैं सारी लंका में आग लगी हुई है तेरे पिता श्री के कारण। इस वक्त मेरा कर्तव्य यही बनता है कि मैं इस नगरी को छोड़ दूं, इस घर को छोड़ दूं। मेरे निकलने से मैंने बहुत कोशिश की तेरे पिता को समझाने की, तेरा बाप समझाने, उसकी दुष्वृत्तियों के कारण, उसके विकारों के कारण, उसके दुर्गुणों के कारण सारी लंका को आग लगी हुई है। और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं सारी की सारी लंका जल के राख हो जाएगी, सारे के सारे राक्षस मर जाएंगे। मेरा इस वक्त यही कर्तव्य बनता है मैं स्वयं भी बचूं और जहां तक जितने राक्षसों को बचा सकूं उन्हें बचाऊं। अतएव मेरा लंका छोड़ना घर के प्रति किसी प्रकार की कृतज्ञता नहीं है, नॉट अनग्रेटफुल। अध्यात्म दृष्टि से सदस्य देखते हैं इस प्रसंग को। भविष्य जी महाराज जैसे हम हैं वैसे भविष्य जी महाराज को जीव कहा जाता है। अध्यात्म दृष्टि से भविष्य जीव हैं, दुर्गुणों के बीच रह के तो जहां पाप अपराध होते थे वह काफी देर तक मूक बनके इनको सहन करता रहा, देखता रहा। हमारे अंतःकरण की, हमारे जीवन की भी यही वास्तविकता है। हम भी जीव हैं भविष्य की तरह, और अंतःकरण में भीतर जितने दोष दुर्गुण इत्यादि हैं और उन द्वारा प्रेरणा पाके जो हम द्वारा पाप होते हैं, हम उनके मूक दृष्टा बने हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे। भविष्य के अपने श्री मुख वाक्य हैं, हनुमान जी के साथ बात हुई तो कहा मेरी हालत तो हनुमान जी ये है जो 32 दांतों में जीवा की होती है, चहु ओर से मैं दुश्मनों से दुर्गुणों से घिरा हुआ हूं। रावण यदि मोह एवं अहंकार के प्रतीक हैं तो मेघनाथ को काम का प्रतीक कहा जाता है, कुंभकर्ण को क्रोध एवं अभिमान का प्रतीक कहा जाता है। तो रिश्तेदार तो यही हुए, सगे संबंधी तो यही हुए। जैसे एक ही अंतःकरण में हम बैठे हुए हैं और एक ही अंतःकरण में अनेक सारे दुर्गुण दोष बैठे हुए हैं। आत्मा के रूप में परमात्मा बैठा हुआ है, जीव बैठा हुआ है, और उसी जगह पर अनेक सारे शत्रु बैठे हुए हैं, विकार बैठे हुए हैं। हंसी से कहते हैं तूने अपने अंतःकरण में 6 कुर्सियां तो पहले ही लगा रखी हैं, मेरे लिए तो कोई कुर्सी है ही नहीं। परमात्मा कहते हैं 6 कुर्सियों पर तूने 6 शत्रु बिठा रखे हुए हैं, मैं कहां बैठूं? तो मेरे बैठने के लिए जगह बना, उनको मैं खुद निकाल दूंगा, पर मेरे बैठने के लिए जगह तो हो, मैं राजाधिराज हूं, मैं गंदी जगह पर नहीं बैठता। मेरे लिए जगह तैयार कर, अपना अंतःकरण शुद्ध कर, ठीक कर, मेरे लिए जगह दे मुझे बैठने के लिए, मैं बैठूंगा तो मैं उन्हें निकाल दूंगा। जहां राजा होता है वहां चोर नहीं रहा करते। मैं राजाधिराज, भगवान श्री कहते हैं मैं राजाधिराज हूं, मेरे होते हुए वहां कोई शत्रु नहीं रह सकते, वे अपने आप चले जाएंगे। पर तो मेरे लिए तो जगह बना, मेरा सिंहासन तो तैयार कर, मैं छोटी मोटी जगह पर नहीं बैठता, मैं राजाधिराज हूं, सिंहासन पर बैठता, मेरे लिए सिंहासन तैयार कर, मैं बिल्कुल बैठने को तैयार हूं। देख मैं तेरे सामने कह रहा हूं, तूने 6 कुर्सियां लगा रखी हुई हैं, 6 की 6 पर वह बैठे हुए हैं, मेरे लिए एक भी कोई कुर्सी खाली नहीं है जहां मैं बैठू, कोई एक कुर्सी मेरे लिए खाली कर तो मैं बैठू। हम सब इन्हीं शत्रुओं से घिरे हुए हैं, भविष्य इन बुराइयों के प्रति विद्रोह करके आ गया है। क्या करना है हमें आध्यात्मिक दृष्टि से, हमें क्या करना है जो भविष्य ने किया है, इन बुराइयों के प्रति रावण के प्रति उसने विद्रोह किया है, और विद्रोह करके अगला स्टेप किया है वह परमात्मा की चरण शरण में आया है। 2 बातें याद रखिएगा, हमारे अंदर भी जो बुराइयां हैं उनके प्रति हमें विद्रोह करना है, और विद्रोह करके तो परमात्मा की चरण शरण लेनी है, तो फिर परमात्मा आपकी शरणागति को स्वीकार करेगा। आप इधर भी हाथ रखो और इधर भी हाथ रखना चाहो तो ये सौदा परमात्मा को पसंद नहीं है, है ना। हमारे जीवन की वास्तविकता भविष्य हमारी तरह जीव है, व्यक्ति चहुं ओर से बुराइयों से शत्रुओं से घिरा हुआ था जैसे हम घिरे हुए हैं। उसने अकलमंदी बस इतनी की है कि बुराई के प्रति विद्रोह करके तो परमात्मा की चरण शरण ले ली है, और परमात्मा ने उसी वक्त उसे भक्तराज बना दिया है। शरणागति को तो देवी सज्जनों में यूं समझता हूं जैसे जैसे ही आप अग्नि के इर्द गिर्द फेरे लेते हैं, यू आर मैरिड, आप पत्नी बन गए हो, उस लखपति की, उस करोड़पति की पत्नी बन गए हो जिसका सब कुछ जो है आपका हो गया। शरणागत इसी प्रकार से देवी सज्जनों, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, परमात्मा का उत्तराधिकारी बन जाता है। लक्ष्मण दो राक्षस राज को राजतिलक उसी वक्त, अरे सारे संसार के मालकों के की चरण शरण में आया है, उनकी शरणागति ग्रहण की है, तो मैं एक लंका का राज्य इसे नहीं दे सकता। शरणागति ग्रहण की शरण में आए उसी वक्त राजतिलक, भक्तराज की उपाधि देखी भगवान ने, इस शरणागति की महिमा है। बुराई के प्रति विद्रोह एवं परमात्मा की चरण शरण में जाना, एक स्टेप, सभी नहीं, बाकी आप परमात्मा करेंगे। यू डोंट हैव टू वरी आफ्टर दैट एट ऑल। ये शरणागति विकलंक है, आप एक दफा भगवान के हो गए उसके बाद आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं है। यदि चिंता करते हो तो स्पष्ट है कि आपको शरणागति का पता नहीं है कि शरणागति क्या है, शरणागति की महिमा का आपको पता नहीं है कि शरणागति की महिमा महात्म में किस प्रकार का है। नो क्वेश्चंस आफ्टर दैट। आपकी चिंता, आप के सारे भय शंका इत्यादि इत्यादि सब परमात्मा ने खत्म कर दिया, अपने ऊपर उन सबका जिम्मा ले लिया। मैं बैठा हूं ना, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। कल आपसे अर्ज की जा रही थी, सुग्रीव एक साधारण व्यक्ति ही है, अभी भी एक साधक नहीं है। इनके आगमन पर शंका व्यक्त हुई है, शंकाशील, सामान्य व्यक्ति शंकाशील संशयशील जैसे हम हैं, लेकिन शरणागत कोई शंकाशील नहीं रहता, सामान्य व्यक्ति नहीं रहता, वह शंका शून्य हो जाता है, किसी प्रकार का संशय उसके मन में नहीं रहता, निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है वह, उसे किसी प्रकार की चिंता इत्यादि नहीं रहती। ये शरणागति की महिमा है। भीष्म पर सुग्रीव शंकाशील है, अतएव कहते हैं प्रभु इन्हें बंदी बना लिया जाए। दशानन का भाई है, हमारे कट्टर शत्रु का, जिसके कारण हम युद्ध कर रहे हैं, जिसने मातेश्वरी सीता का अपहरण किया है, वह हमारा कट्टर शत्रु है, हमें उसे मारना है। और आपने ये व्रत लिया हुआ है कि आप इस सारी की सारी धरती को राक्षस शून्य बना दोगे, तो उसी का भाई है, तस्वर्ती नहीं है, विश्वसनीय है। एक शंकाशील मन सब पर शंका करता है, पता है ना आपको, जिसके अपने मन में शंकाएं हुआ करती हैं, संशय हुआ करते हैं, वह हर एक पर शंका करता है, हर एक पर संशय करता है। उसकी दृष्टि ऐसे समझिएगा जैसे उसने ऐनक, शंका की ऐनक लगा ली है, संशय की ऐनक लगा ली है, अतएव हर पर शंका है, हर पर व्यक्ति कोई मामूली सी बात भी होती है तो उसकी थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रहती, उसकी नेगेटिव थिंकिंग, शंका वाली थिंकिंग जो है वह हो जाती है। इसे बंदी बना दीजिएगा, इसे दंडित करेंगे हम, इसे मारेंगे, इसे पीटेंगे, इसका इसे रक्त शून्य कर देंगे, इस प्रकार से इसे मारेंगे, ये उसके सुझाव हैं। प्रभु राम मुस्कुरा के कहते हैं, हनुमान मेरा अनुमान है कि ये व्यक्ति सज्जन है, तू उसे आमंत्रित करके आया है, तू बोलता क्यों नहीं, तू तो यथार्थता को जानता है, तू उसे आमंत्रित करके आया है कि आ प्रभु की शरण में आ, यदि मेरे जैसे को प्रभु अपनी चरण शरण में ग्रहण कर सकते हैं तो बहुत अच्छा आदमी है, तेरे घर तो तुलसी का पौधा है, मैं तो वानर हूं, मेरी शक्ल को सुबह देख लेते हैं तो रोटी नहीं मिलती। हनुमान जी महाराज भविष्य को कहते हैं, तेरे घर में तुलसी का पौधा है, तू तो भक्त है, लंका में रहते हुए भी, राक्षसों के बीच रहते हुए भी तू एक महान भक्त है, तेरे घर में तुलसी का पौधा है, तेरे घर से राम राम की आवाज निकलती है, अरे तुझे ग्रहण नहीं करेंगे, तुझे स्वीकार नहीं करेंगे, कैसे हो सकता है। भगवान इस तत्व को बहुत अच्छी तरह से जानते, हनुमान तू तो उन्हें आमंत्रित करके आया है, तू उनके मिल के आया है, वे आए हैं तो उन्हें सम्मान दे। प्रभु राम हनुमान जी से कहते हैं, बोलता क्यों नहीं, बोल। हनुमान जी को बुला रहे हैं प्रभु, हनुमान जी एक सीधी सी बात पूछते हैं, शरणागत सिद्धांत के साधक जिन्हों पुजारी हैं हनुमान जी महाराज, कर्म सिद्धांत के नहीं, जैसे सृष्टि की रचना हुई साथ ही साथ परमात्मा ने कर्म सिद्धांत भी रच दिया, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय, ये शरणागति का सिद्धांत नहीं है। प्रभु राम से एक ही प्रश्न पूछता है, कल करेंगे चर्चा इसकी आगे, आज इस प्रश्न पर आप भी थोड़ा चिंतन मनन कीजिएगा। ये प्रश्न पूछते हैं हनुमान जी महाराज, प्रभु मुझे एक बात बताएं, ये लंका में क्या घोषणा करके आए हैं और यहां इन्होंने आके क्या कहा है। प्रभु ने कहा, लंका में इन्होंने घोषणा की है कि मैं लंका छोड़ के, राज्य छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के तो प्रभु राम की शरण में जा रहा हूं, और यहां आके कहा है मैं आपकी चरण शरण में आया। मुझे ये बताएं प्रभु, हनुमान जी पूछते हैं, मुझे ये बताएं, शरणागति कोई न्यायालय है जहां कोर्ट, न्यायालय अर्थात कोर्ट, जहां जजमेंट दी जाती है, या अस्पताल है जहां रोगियों का उपचार होता है। एक शरणागत प्रभु स्वीकार करता है कि मैं रोगी हूं और वह आपके अस्पताल में आया है, वह यह भी स्वीकार करता है कि मैं अपने रोगों को ठीक नहीं कर सकता, तभी मैंने आपकी चरण शरण ग्रहण करी है। आप एक बहुत उच्च कोटि के वैद्य हो, आपका क्या कर्तव्य बनता है, कल करेंगे साधक जी में इसकी चर्चा, आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।